તારીખ 2/6/1996 શ્રી અનુભવ પ્રકાશ ગ્રંથમાં નિજ ધર્મ અધિકાર ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું માઉન્ટ આબુમાં પ્રવચન. મૂળ કેસેટમાં ડિસ્ટર્બન્સ છે.
નિજ ધર્મ અધિકાર વિશે ચલતા હૈ. નિજ ધર્મ માને આત્મા કા ધર્મ. आत्मा का धर्म क्या है कि निर्दोष परिणाम में रहना, यही आत्मा का धर्म है. किसी भी प्रकार के दूषित परिणाम में रहना वो आत्मा का धर्म नहीं है. उस प्रकार का प्रकरण यहां पर चल रहा है. वो कहते हैं कि उसकी विशेष बात कर रहे हैं, विशेष प्रकार से वो बात को समझा रहे हैं कि इस अनादि संसार में जीव कर्म योग से जन्मादि दुख भोगता है. यहां से लेना है, आखिर से ऊपर का पैराग्राफ है. आखिर का जो पैराग्राफ है इससे ऊपर का पैराग्राफ है, पहली पंक्ति, कि इस अनादि संसार में जो संसार है वो अनादि से चल रहा है. जीवों की संख्या अनंत है. कुछ कुछ जीव मोक्ष में चले जाते हैं, फिर भी संसार की जीवों की संख्या की इतनी बड़ी तादाद है कि जो मोक्ष में गए उसकी कोई गिनती नहीं रहती. जैसे कोई समुद्र में से एक चम्मच पानी ले ले, इतना बड़ा समुद्र हो, पोषण जिसको बोलते हैं, उसमें से एक चम्मच पानी ले लिए तो कितना पानी कम हो गया समुद्र में से? एक चम्मच क्या, अरबों टन ले लें तो भी पता नहीं चले इतना बड़ा समुद्र है. ये जो धूप पड़ती है अरबों टन पानी ऊपर चला जाता है वेपोराइज होकर के, बाष्पीभवन होकर के अरबों टन पानी ऊपर जाता है और फिर गिरता भी है. जब अरबों टन पानी इसमें से निकल जाता है तो भी पता नहीं चलता है, और वो गिर करके वापस आता है तो भी पता नहीं चलता है. समुद्र उतना ही इतना मालूम पड़ता है. अरबों के अरबों टन पानी ऊपर चला गया, समुद्र में कोई कमी नहीं दिखी, पर वापस वही अरबों टन पानी बह करके गिर करके समुद्र में आया, समुद्र में कोई पता नहीं चलता है. तो फिर एक चम्मच कोई ले लेगा इसके, इससे क्या फर्क पड़ेगा, जब अरबों टन से भी फर्क नहीं पड़ता है तो एक चम्मच से क्या फर्क पड़ेगा. ऐसे इस संसार में जीव की संख्या की तादाद इतनी बड़ी है कि मोक्ष में कुछ एक जीव चले जाते हैं, 6 महीने में 608 जाते हैं, पर ऐसे बहुत गए, इसकी संख्या भी अनलिमिटेड है, इतने गए. फिर भी संख्या इतनी है संसार में कि समुद्र में से एक चम्मच पानी गया, पर ऐसे एक एक चम्मच लेते रहो तो समुद्र कैसे खाली होगा. समुद्र में से एक एक चम्मच पानी लिए लेते रहो, 6-6 महीने में एक चम्मच लिया करो, 6 महीने में एक चम्मच लिया करो, कब समुद्र खाली होगा? कभी नहीं होगा. ऐसे इस अनादि संसार, ऐसे ही अनंत जीवों का भयंकर परिभ्रमण से चालू रहेगा. परिभ्रमण भयंकर इसलिए है कि इसमें बहुत दुखी होते हैं प्राणी. संसार में प्राणी बहुत दुखी है, इसमें हम भी एक हैं. हमको दुख नहीं चाहिए, सबों को नहीं चाहिए लेकिन हमको तो नहीं चाहिए, तो इसके लिए निज धर्म अधिकार बोले। सुखी होना वही निज धर्म है। चलो, जैसे पहले ये कहा कि निर्दोष होना ये निज धर्म है, तो सुख है वो निर्दोषता के साथ अभेद है, एक सिक्का की दो बाजू की तरह। इसलिए सुखी जिसको होना है उसको निर्दोष होना जरूरी है, आवश्यक है। पर जीव को कोई दुख देता है तो दोष ही दुख देता है अपना, और कोई दुख नहीं देता है, कोई संयोग दुख नहीं देता है, कोई परिस्थिति दुख नहीं देती है। ये सिद्धांतिक बात है। सिद्धांत मैंने सिद्ध अंत हो गया, सिद्ध होकर के दी एंड आ गया, उसको कहते हैं सिद्धांत। कि अगर जीव दुखी होता है तो अपने दोष के कारण से होता है, दूसरी कोई बात उसमें नहीं है। इसलिए जब हम दुखी हुए हमारे परिणाम में दुख भाव का अनुभव हो गए, तो हमें सोचना है कि हम कुछ किसी न किसी प्रकार के दोष से दुखी हो रहे हैं। ये बात एकदम निष्कर्ष होकर के सिद्ध हुई है, इसलिए उसको सिद्धांत कहते हैं। तो यहां कहते हैं कि अनादि संसार में जीव कर्म योग से जन्मादि दुख भोगता है। यहां कर्म योग शब्द लगाया है, तो उसका दोष का दूसरा नाम है। दोष का दूसरा नाम क्या है? कर्म योग। कर्म योग मैंने कर्म के उदय के साथ जुड़ना, जो जीव कर्म के उदय के साथ जुड़ता है उसमें दोष की उत्पत्ति होती है। जैसी प्रकृति उदय में आई वैसा उसके साथ जुड़ान होने से, योग होने से, यूज योग टू ज्वाइन, जुड़ान होने से उसी प्रकार का भाव हो जाएगा। जैसी प्रकृति लोभ की आई लोभ भाव हो जाएगा, क्रोध की आई क्रोध भाव हो जाएगा, मान की आई मान भाव हो जाएगा, अहंकार मैंने मान, तो उस प्रकृति में के जुड़ान से ये हो रहा है। दोष अपने आप जीव ऐसे नहीं करता, किसी न किसी का अवलंबन लेकर के कर लेता है। तो बाहर में कोई पदार्थ हो या नहीं हो, अंदर में कर्म का उदय का अवलंबन तो लेता ही है, ले ही लेता है, और परिणाम में दोष चालू हो जाता है। जैसे नींद में कोई पदार्थ तो नहीं है लेकिन स्वप्न आया, अंदर में कर्मोदय चल रहा है। कुछ लोग नींद में हार्ट अटैक से मर जाते हैं, इसका क्या कारण है? कि डॉक्टर ने वो सूचना दिया है कि इमोशनल पोजिशन ऑफ द माइंड इज डेंजरस फॉर यू। आपको कभी इमोशनल पोजीशन में नहीं आना है। तो क्या है कि कोई क्रोध होने का प्रसंग बनता है वो दूर चला जाएगा, ज्ञान नहीं होगा तो कम से कम क्या करेगा, दूर चला जाएगा। इमोशनल होता है ना, क्रोध होने में इमोशन आ जाता है, या कोई फीलिंग संयोग वियोग में ज्यादा तीव्र होती है, ऐसा कोई प्रसंग मालूम पड़ता है तो प्रसंग से दूर हो जाता है। लेकिन स्वप्न में क्या करें, भीतर में कर्म का उदय आया पर स्वप्न में परिणाम बहुत गड़बड़ वाले हो जाते हैं, परिणाम में इमोशन आ जाती है, स्वप्न में इमोशनल परिणाम हो जाते हैं और हाथ फेल हो जाते हैं, हाथ को शक्ति नहीं रही काम करने की, फेल हो जाता है, बेबस परिणाम होते हैं। कर्म योग में पर जीव के दूषित परिणाम व्यवस्था से चलते हैं, उसको कैसे कंट्रोल करे, वही हमको सीखना है, वही समझना है, वही हमको करना है। तो कहते हैं कि अपने स्वरूप को पहचानो, और जो परिणाम कर्म का योग करता है उस परिणाम को आत्म योग में ले जाओ। सीधा आत्म योग नहीं मिले, क्योंकि पहचानना आसान नहीं है। स्वरूप को पहचान ऐसे तो होती नहीं, बहुत सूक्ष्म तत्व है, अंतर तत्व स्वरूप है तो परमात्मा, आत्मा ऐसो परमात्मा है, अंतर तत्व स्वरूप है, लेकिन सूक्ष्म होने से ऐसे पता नहीं चलता। तो इसके पहले कर्मयोग में नहीं जाने के लिए उस परिणामों को गुरु चरण में ले जाते हैं ओंकार जी, इसलिए गुरु से गुरु की बात आती है हमारे यहाँ। गुरु का महत्व क्यों गाया, इसलिए गया कि आत्मयोग तो जल्दी मिलता नहीं, सर्वसाधारण को मिलता नहीं, सर्वसाधारण को गुरु का योग मिल सकता है, क्योंकि ये स्थूल पदार्थ है, दिखता है, सब मानते हैं, सब जानते हैं, अगर पुण्य योग वाला गुरु हो तो परिणाम को गुरु चरण में लेगा, फिर साइड होगी। यही कारण है गुरु की, ज्ञानी की, सत्पुरुष की, जो हमारे आगमों में शास्त्रों में महिमा गाई है, इसका कारण वो है कि गुरु चरण में अगर परिणाम चले जाते हैं तो उदय से बच जाता है। तो प्रारंभ में सबसे आसान तरीका वो होने से भगवान की दिव्य ध्वनि में भी, तीर्थंकरों की दिव्य ध्वनि में भी वो बात आई कि गुरु चरण में मन को स्थापित कर देना। तो भी थोड़ा कठिन तो है, तो भी उतना आसान नहीं है, क्योंकि कर्मयोग जो है वो भी बलवान है, कर्मयोग भी बलवान है, लेकिन पुरुषार्थ से सब कुछ हो सकता है। क्या जीव करना चाहे तो, निर्धार करे तो हो सकता है, नहीं होता है ऐसी बात नहीं। क्या कहा कि इस अनादि संसार में जीव कर्मयोग से जन्मादि दुख भोगता है। जन्म आदि मैंने जन्म का दुख, मरण का दुख, टेंशन का दुख, एक्सीडेंट और रोग हुए तो पीड़ा बाधा का दुख, और अनिष्ट संयोग का दुख, इष्ट वियोग का दुख जो टेंशन को पैदा करता है, अनेक प्रकार का जो दुख है वो दुख अनादि संसार से इस चीज भोग रहा है। क्यों कि वह जो भोगने वाला जीव है वह इस पर धर्म को निज धर्म मानता है, पर धर्म को निज धर्म मानता है, ड्यूटी फरज उसके नाम से भी, मैं मनुष्य हूं तो मेरा मानव धर्म है, मैं एक परिवार वाला हूं तो मेरा पारिवारिक धर्म है, समाज वाला हूं तो मेरा समाज सामाजिक समाज धर्म है, और जो भी व्यवसाय में होता है जिसको जो भी उदय है तो उसमें वो अपना धर्म फर्ज मान लेता है कि मेरा ऐसा धर्म है। जैसे कारोबार में मालिक है तो मालिक का धर्म, मैनेजर हो तो मैनेजर का धर्म, चपरासी है तो चपरासी का धर्म, और घर में बहन होती है तो समझती है कि मैं बहू हो तो बहू का धर्म, सास हो तो सास का धर्म, जेठानी हो तो जेठानी का, देरानी हो तो देरानी का, पुत्री हो तो पुत्री का, माँ हो तो माँ का। बहुत से प्रकार के संबंध है, जैसे जैसे संबंध है वैसा वैसा हमारा धर्म है, ड्यूटी है, फर्ज है, कर्तव्य है, ये मान करके पर धर्म को निज धर्म मानता है। ये सभी प्रकार का पर धर्म को निज धर्म मानता है, फिर भूल हुई धर्म की, तो धर्म का अधिकार लिया है ना, इसलिए वो स्टाइल ले लिया कि पर धर्म को निज धर्म मानता है, इसीलिए दुख को प्राप्त करता है, दुख पामता है। इसका कारण वो है कि पर धर्म को निज धर्म माना। यह तो सत्य है, ये बात तो सत्य है। कैसे कैसे सत्य है कि जो सरदार प्रधान पुरुष को निंद में गिनता है तो दंड सहता है, निंद देह में चेतन धर्म माने तो दुख पामता है, पामे ही पामे। तो क्या है कि जो मुखिया लोग है कोई, उसका गुनाह है, गुनाह में वो आता है तो उसको भी दंड मिलता है, चाहे मुखिया हो तो क्या हो गया। ऐसे ये देह हमको मुख्य हो गया है, शरीर हमको मुख्य हुआ है, और उसमें चेतन धर्म अपना आत्मधर्म देहात्म बुद्धि शरीर को ही आत्मा माना, दो तत्व भिन्न है। इस शरीर में के संयोग में जो चेतन सचेतन पदार्थ है आत्मा, जीव जिसको कहते हैं, आत्मा कहते हैं, तो चेतन गुण वाला, चेतना गुण वाला एक पदार्थ है, और शरीर जड़ पदार्थ है जिसमें चेतना नहीं है। संयोग से वो मुर्दा नहीं दिखता है, जीव का संयोग होने से, चेतन का संयोग होने से वो मुर्दा नहीं दिखता है, लेकिन उस वक्त भी मुर्दा ही है, क्योंकि वो परमाणु की रचना है। परमाणु कभी सचेतन होते नहीं और जीव कभी अचेतन होता नहीं। तो देह कैसा है, निंद्य है, निंदा करने योग्य है। जैसे कोई भी बड़ा का बड़ा से बड़ा राष्ट्रपति हो गए लेकिन गैर कानूनी काम करे तो उसको दंड सहना पड़े। ये प्राइम मिनिस्टर का ये सब आता है ना पेपरों में, कौभांड बोलते हैं, हाँ? तो उसको भी फिर छोड़ना पड़ता है, दंड सहना पड़ता है, नीचे उतर जाओ, ये नहीं चलेगा। वैसे क्योंकि वो जो गुनाह है, अपराध है, वो निंद्य कर्म है, वैसे ही ये शरीर को निंद्य बोला है। यार निंद्य मैंने क्या कि इसके अवलंबन से परिणाम भी निंद्य होते हैं, इसलिए आरोप लगाया शरीर पर, जीव को सबसे ज्यादा मोह किसका होता है,
शरीर का।
तो कहते हैं कि शरीर तो निंद्य है, निंदा का योग्य है, इसमें कौन सी अच्छाई है, ये तो पूरा गंदा है, इसमें कोई अच्छापन जैसी कोई बात तो
नहीं है
ही नहीं, फिर भी उसमें अपनत्व करता है, उसमें वो चेतन धर्म को मानता है। मेरा शरीर वही अपराध हो गया, और इसलिए वो दुख प्राप्त करेगा करेगा और
करेगा
ही। सभी प्रकार के दुख की, कोई धरी है, एक्सल जिसको बोलते हैं, धरी जिसके आधार से दुख होता है वो शरीर है। देखिए इस सबके पीछे वो बात खड़ी है, इसलिए मोक्ष में देहातीत दशा होती है, विदेही दशा होती है। जो भी आत्माएं निर्वाण को पधारे, मोक्षालय सिद्धालय में गए, उनको वह शरीर नहीं है, अशरीर ही है। और इसका प्रारंभ पहला स्वानुभव होता है, स्वानुभूति होती है, आत्मानुभव होता है, तब देहातीत अनुभव होता है। अभी हम लोगों को हम देह वाले हैं ऐसा अनुभव बिना सोचे भी चालू है, कि हम शरीर वाले हैं ऐसा अनुभव चालू है। और स्वानुभव में देहातीत जो आत्मदशा है उसका अनुभव होता है। प्रारंभ यहां से होता है अनुभव का, और उसका जो नतीजा है, उसका जो रिजल्ट है, वो मोक्ष में सिद्धालय में आता है। उससे उनका हम कार्य करते हैं कि अचेतन शरीर में हम चेतन धर्म, आत्म धर्म, आत्मपना, अपनत्व करते हैं, तो दुख प्राप्त होगा ही होगा, क्योंकि ये अपराध हो गया। संसार में भी दूसरे की चीज को अपनी चीज माने, स्वीकारे या ले ले, अधिकार जमा ले, क्या होगा? अपराध, या तो चोरी से, या तो लूट से, या कैसे भी दूसरे की चीज पर हमारा अधिकार है ही नहीं, फिर भी अधिकार करने को जाए तो उसका दंड भुगतना पड़ता है बाकायदा। वैसे ही ये वितरागी कानून है कि इस जीव का संसार में कोई जड़ पदार्थ नहीं है, शरीर भी जो अपना नहीं है तो दूसरे पदार्थ तो अपना है ही नहीं, फिर भी हम अधिकार जमाते हैं, ये शरीर मेरा, मकान मेरा, संपत्ति मेरी, परिवार मेरा, वो मेरा, मेरा मेरा, तो उसका दंड भुगतना ही पड़े, ये कुदरत का कानून है, ये कुदरत का कानून है। शुद्ध चैतन्य धर्म को जब धर्म जाने तब ही संसार तारण धर्म, अनंत चेतना रूप धर्म को जाने और उस द्वारा शुद्ध चैतन्य जीव धर्म स्वग्नि पर्वग्नि को प्रकाश प्रकाशित करे, इसलिए प्रकाश धर्म, और उसने सर्व द्रव्यों का धर्म प्रकट किया, उसके धर्म को प्रकट कर दिए, लाए मैंने प्रकट करके लाए, क्या कहते हैं कि शुद्ध चैतन्य धर्म को जब धर्म जाने तब सर्वगुण प्रकट होता है। ये जो सुरेंद्राबाद गए थे ना, भाई साहब जो आए हैं निरंकारी, तो अहंकार नहीं करना, लेकिन वो बात मर्यादित है, शरीर में अहंकार नहीं करना, संपत्ति में अहंकार नहीं करना, बुद्धि का विकास में अहंकार नहीं करना, शुभ भाव अच्छे परिणाम चले उसमें अहंकार नहीं करना, शुभ कार्य हमारे से होवे तो उसमें अहंकार नहीं करना, पर जगत में किसी पदार्थ में अहंकार नहीं करना, लेकिन अपनी आत्मा में जरूर अहंकार करना। क्या? आत्मा में अहंकार करना, उसमें निरंकार ही नहीं होना। निरंकार का एकांत बना यह नहीं होना, वो अनेकांतिक है कि अपने स्वरूप को छोड़ करके अपना अस्तित्व कहीं नहीं है तो हमारा अहंकार होना या करना अपराध है।
पर में अहंकार नहीं,
पर में अहंकार नहीं करना वो अपराध है, लेकिन स्वरूप में अहंकार करना वो साधना और आराधना है, पर वो कर्तव्य है। मिले मिले, सत्संग की रुचि हुई है, इतना लंबा सफर किया तो सत्संग की रुचि हुई है, अच्छी बात है, प्रसन्नता हो गई, ऐसी बात है। क्योंकि ये तो जन्म मरण के सभी प्रकार के दुख मिटाने का इलाज है, सत्संग में वो इलाज का परामर्श होता है, फिर प्रयोग तो अपने खुद को करना होता है, लेकिन सत्संग में चारों पहलू से उनका विमर्श होता है, परामर्श होता है, तो प्रयोग करना आसान पड़ता है, या कहीं गलती होती है तो सुलझ आ जाती है, हमारे यहाँ गलती हो। क्या कहते हैं कि शुद्ध चैतन्य धर्म को जब धर्म जाने, शुद्ध चैतन्य अपना स्वरूप है, पर अपना स्वरूप जो स्वभाव धारण करता है वही निज धर्म है, उनको धर्म जाने, तब उस धर्म को जानते ही वो संसार को तिरने का धर्म है, क्योंकि संसार में किसी पदार्थ से अपनत्व नहीं होगा, फिर संसार से अपनत्व उठाने के लिए क्या करना चाहिए, ऐसा एक प्रश्न रखें। तो शुद्ध चैतन्य अपना स्वरूप है, वही अपना स्वभाव है, वही अपना धर्म है, उस रूप पर नमन करें, यानी अपने शुद्ध चैतन्य में अहम बुद्धि करें, अन्य तत्व में अन्य द्रव्य में जो अहंकार हमने किया है उसको छोड़ करके अपने शुद्ध चैतन्य स्वभाव में शुद्ध स्वरूप में अहंकार करे, तो शुद्ध चैतन्य धर्म है, वही कर्तव्य है, वही ड्यूटी है, वही फर्ज है,
वही वास्तविकता है,
और वही संसार से तिरने का एकमात्र इलाज है, इसलिए उसी धर्म को संसार तारण धर्म कहा, सबसे पहले वो बात किया, क्योंकि शुरुआत वहां से किया था कि इस संसार में जीव परिभ्रमण कर रहा है, तो संसार में परिभ्रमण कर रहा है तो वो उल्टा धर्म से करता है, पर धर्म से करता है, अब स्वधर्म में आया तो संसार तारण धर्म मिला, कौन सा धर्म हुआ, संसार तारण धर्म, जन्म मरण के समुद्र से तिर गया। उसमें तो जो तारण पंथी जो दिगंबर लोग हैं उसमें तो तारण स्वामी करके महात्मा हो गए, इसलिए उनके अनुयायी वर्ग को तारण पंथी कहते हैं, लेकिन वो गुणवाचक नाम है, महात्मा का नाम भी गुणवाचक है, जैसे महावीर गुणवाचक नाम है, महान पराक्रम करने वाले वीर पुरुष को कहेंगे महावीर, जैसे संसार से जो तिरता है ऐसे आत्मा को, महात्मा को तारण स्वामी को, अब फिर तो क्या उसको एक विशेषण लगाया कि उसने ऐसा मार्ग बताया, तारण स्वामी ने ऐसा ज्ञान दिया, हम तिर गए, इसलिए वो अकेले तारण स्वामी नहीं रहे, वो तरण तारण स्वामी रहे गए। तो एक विशेषण और लगा दिया, सिर्फ तारण स्वामी नहीं कह करके तरण तारण कहते हैं, उनको संसार से तिराने के लिए
को क्लेश देवे,
स्थाई कश्ती, तो वो धर्म हो जाएगा। बहुत दुख होवे उसी का, बहुत दुख सहन करना पड़े उसी का नाम धर्म। जैसे शरीर को खाने मत दो, उपवास करते हैं, शरीर को खाना बंद कर दो, धर्म हो जाएगा। तो कहते हैं कि धर्म तो धर्म करने वाले सुखी होते हैं, दुखी होते नहीं। जिसको क्लेशित परिणाम हुए तो हितरूप धर्म नहीं है, सुखरूप धर्म नहीं है। इसलिए हमारे धर्म साधन दुखदायक नहीं है। सम्यक प्रकार से तपश्चर्या करने वाला उपवास करेगा, उसका सुख बढ़ जाएगा। क्या होगा? खाना नहीं खाने से दुखी नहीं होगा, उपवास के दिन इसका सुख बढ़ जाएगा। हम तो नहीं खाने को उपवास बोलते हैं, लेकिन उपवास का अर्थ है उप मैंने समीप, वास मैंने रहना, समीप रहना। अनंत सुख का भंडार जो हमारी आत्मा है उसके समीप रह करके विशेष सुख रूप परिणाम रूप धर्म में रहना, यही उपवास है। खाने का विकल्प नहीं आया, खाने का मन नहीं हुआ, खाने का उपयोग नहीं चला, खाने में रस नहीं आया तो खाना छोड़ दिया। क्योंकि सुख में है, सुख रस को भोगते हैं, इस प्रकार से उपवास होता है। और समय प्रकार से ऐसे ही उपवास महात्मा होने किए हैं। लेकिन ऐसा सुखरूप परिणाम तो होवे नहीं, समीप वास आत्मा का होवे नहीं, इसलिए सुख तो होवे नहीं। पर फिर भी नहीं खा करके क्लेशित परिणाम हो जाए, पर हम माने कि हमने तपस्या का दुख सहन किया, इसलिए हमने उपवास किया या हमने धर्म किया, तो वो बात समझदारी की। सम्यक प्रकार से आत्मा के सुख को भोगते भोगते आहार आदि का सहज छूट जाना, ऐसा आत्मा का हित रूप धर्म है। हित रूप धर्म बोले, नित धर्म, धर्म का नाम देते हैं, निज धर्म का नाम कितने कितने हैं और नाम के अनुसार गुण कितने कितने हैं। सिर्फ नाम ही नहीं, सब नाम गुणवाचक है। धर्म के जितने भी नाम हैं वो सभी गुणवाचक हैं। इसलिए निज रूप से अनंत सुख होता है, इसलिए हित धर्म है। तो इसका मतलब यह हुआ कि धर्म करने वाला जी, यानी धर्म की प्राप्ति होती है ऐसा जी, निज सुख को प्राप्त करता है, हमेशा निज सुख में रहता है और सुख और निर्दोष का अभेद रहती है, दुख और दोष अभेद रहता है। दुखी होना धर्म नहीं है, अधर्म है। दुखी होना ये धर्म नहीं है, अधर्म है, क्योंकि दोष से ही दुख होता है, बिना दोष दुख होता ही नहीं। आप कहेंगे कि शरीर में पीड़ा हुई नहीं खाने से, या रोग से, या कोई किसी भी प्रकार के एक्सीडेंट से शरीर कट जाता है, पीड़ा होती है, इसमें दुख होता है। तो इसमें दुख होता है, उसमें हमने दोष क्या किया, अपराध क्या हमारा हो गया? तो सिद्धांत वो है कि दुख का कारण केवल दोष ही है, परिस्थिति नहीं। क्या कोई पर ऐसे परिस्थिति में हमने क्या दोष किया? रोग आया, पीड़ा हुई, दुख हुआ, उसमें हमने दोष क्या किया? शरीर में अपनत्व करने का दोष किया, दोष किया। देहात्म बुद्धि का वो दोष बड़ा दोष है, वो दोष हमने किया। शरीर में अहम बुद्धि धारण किया, इसलिए पीड़ा का दुख हुआ है, वरना असाता का पीड़ा का दुख होने वाला है ही नहीं। देखिए एक व्यापारी है, अपनी दुकान पे व्यापार करता है, बहुत अच्छे घर आ गए, डॉक्टर को मरीज लोग आते हैं, तो इनके घर आ गए, अच्छे आए, मैंने ज्यादा पैसे देने वाले आए, ज्यादा कमाई कराने वाले आए, आपको बड़ा केस, आपको बड़ा ग्रास, तो उसको प्रवृत्ति करते करते खाना खाने का टाइम हो गया, भूख का दुख क्यों नहीं लगा? उस वक्त शरीर धर्म के अनुसार भूख भी लगेगी, थोड़ी देर ध्यान भी जाएगा, लेकिन अभी इंटरेस्ट जमा हुआ है कि ये घराट को पूरा पूरा करके दाने देना है, इसके पहले दाने देना नहीं है, तो क्या बोलेगा? और कुछ चाहिए, और कुछ लेना है, और दिखाओ, जैसे कपड़े का व्यापार, और माल दिखाएगा, और डिजाइन दिखाएगा, और आइटम दिखाएगा, पता तो चला है, खाना खाने का टाइम भी हो गया है, भूख भी लगी है, और घर पे टेलीफोन कर दिया कि मैं देर लगने वाली है, मेरा इंतजार मत करिए, तो घर वाली टिफिन भेज देंगी, काम ज्यादा होगा तो नहीं आएंगे, तो काम में ऐसा ही होता है, अपन टिफिन भेज दो, टिफिन आए तो पड़ा रहेगा, क्यों? काम में रस है इतना, प्रायोरिटी चेंज होगी, व्यापार करना, खाना खाना, व्यापार क्यों करते हो? खाना खाने के लिए तो व्यापार करते हो, व्यापार क्यों करते हो? अच्छी तरह से खाना खाए इसलिए, तो अच्छी तरह से खाना खाना को छोड़कर व्यापार करते हैं, तो प्रायोरिटी चेंज लगता है, इसलिए भूख लगे इसलिए दुख होना, वो बात उपवास में कब नहीं होती कि जब हमको हमारे शुद्ध चैतन्य में से उत्पन्न हुआ निज स्वरूप से अनंत सुख होता है, इसलिए हित कर्म है, तो सुख होने का कर्म है, दुख होने का धर्म है ही नहीं। इस तरह से जो महात्मा तपस्या करते हैं उसी तरह से करते हैं, वो प्रयोग करते हैं, क्या करते हैं? उपवास तपस्या में क्या करते हैं? वो प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं? कि उसी वक्त वो अधिक सुखी होते हैं, इसका प्रयोग करते हैं, अधिक सुखी होने का प्रयोग करते हैं, दुखी होने का प्रयोग, क्योंकि धर्म ही सुखी होने का है, ये धर्म सुख होने के लिए, एकांत सुख होने के लिए ये धर्म है, बिल्कुल दुख होने के लिए धर्म है ही। इसलिए जो समझदार है, जो विचारवान है, धर्म के पीछे पूरी ताकत लगा के टॉप प्रायोरिटी में इस धर्म की उपासना, हमारे 24 तीर्थंकर में से 3 तीर्थंकर तो चक्रवर्ती थे, शांतिनाथ, कुंथुनाथ और अरनाथ। तीन पद के धारी। हाँ, कामदेव भी थे, चक्रवर्ती भी थे और तीर्थंकर भी थे। दो पद हमने गिनाए, तीर्थंकर भी थे और चक्रवर्ती थे। कामदेव से मैंने स्वरूपवान थे, तीन देव का उपनाम। क्या होता है कि जो संपत्ति है वो तो चक्रवर्ती को मनुष्य में सबसे ज्यादा, इससे अधिक संपत्ति किसी को। उस संपत्ति को छोड़ करके वो जंगल में स्वरूप की उपासना करने के लिए चले गए, तो क्या दुखी होने के लिए चले गए या उनको महल में रहना सुख था या जंगल में रहने का सुख था? वैसे तो सुख तो आत्मा में रहने के था, अपने धर्म में रहने के लिए था। फिर ये बाहर में महलों का, रानियों का, राज का, संपत्ति का त्याग क्यों किया? उसमें अपनत्व तो नहीं था जन्म से, वो तो आते हैं ज्ञान लेकर के आते हैं, तो जन्म से अपनत्व तो नहीं था, लेकिन कुछ रागांश बाकी रह गया। इस कारण से परिणाम लगते रहते थे। जो भी कर्म योग था, ये संपत्ति वगैरह कर्म योग से था, प्रारब्ध योग से था। कामदेव जैसा शरीर और चक्रवर्ती जैसे अनुकूल संयोग, तो गुरुदेव कहते टाइल्स है ना, अपन सीमेंट की या मार्बल का वो पलंग बनाते हैं, रत्न के पलंग बनते हैं, रत्नों के संबंध बड़े बड़े पत्थर होते हैं, हमसे बड़ा पत्थर दिखने में भी नहीं आ रहा। उतनी संपत्ति जिसका कोई हिसाब नहीं, उसमें परिणाम राग से चल जाता था और वो राग दुखदायक, वो राग छूट गया तो उन चीजों से क्या मतलब रहा? अब परिवार वाले कहेंगे कि मेरे से राग छोड़ो, तो हाथ जोड़ता है, दीक्षा लेते वक्त हाथ जोड़ देते हैं, मेरा राग चला गया मेरे को छोड़ दो, मेरा राग चला गया है मुझे जाकर मेरे स्वरूप की आराधना करने दो, मैं अनंत सुखी होना चाहता हूं, जितना राग है उतना दुख है, मुझे भी जितना राग है उतना दुख है, वो दुख मुझे नहीं चाहिए, वो दुख मुझे नहीं चाहिए। तो दुख से छूटने के लिए और अधिक होने के लिए राग और राग का त्याग कर दिया, क्या उत्पन्न होने से वो त्याग इसका हो गया, तो बोला कि त्याग कर दिया, लेकिन त्याग हो गया था। महलों में रहकर के उतनी आराधना किया, जब वितरागता इतनी बढ़ गई कि उसको त्याग हो गया, करना नहीं पड़ा लेकिन गिरने लगता है, उसको रोक सकते हैं क्या? अंदर की चीज है तो अंदर रहने के लिए वो बात नहीं है। निकल जाएगा, वरना करना भारी भारी लगेगा, निकालना पड़ेगा। ऐसे वो राग था, वो जैसे शरीर का मैल है, कफ है वो शरीर का मैल है, ऐसे राग है वो आत्मा का मैल था, उसका बोझा लगने लगा, निकाल दिया। सुखी होने के लिए जंगल में जाते, इसलिए उसको निज रूप से अनंत सुख होता है, इसलिए हित धर्म कहते हैं। और अन्य में नहीं है, मेरा धर्म मेरे में है, अन्य में नहीं है, इसलिए असाधारण धर्म भी उसको कहते हैं, अनकॉमन। असाधारण मैंने अनकॉमन, ऐसा धर्म धर्म के नाम बताते हैं विशेष प्रकार से। क्या प्रकरण चलता है, जो निज धर्म है उसमें कितने गुण है, वो गुण अनुसार उसके कितने नाम है, नाम से गुण बताते हैं, नाम दे करके गुण बताते हैं। और सहज रूप अविनाशी आनंद है, इसलिए अविनाशी सुख रूप धर्म, अविनाशी आनंद है। स्वभाव से ही आनंद स्वरूप है, कहते हैं सच्चिदानंद स्वरूप हूं मैं, कैसा हूं, सच्चिदानंद स्वरूप हूं। तो उसमें अविनाशी जो है वो सत्का धर्म है, सत्का स्वरूप है, सत्का धर्म नहीं, सत्का स्वरूप है, सत मैंने होना, एग्जिस्टेंस को बताने वाला सत है, अस्तित्व सूचक सत है। कैसा है कि शाश्वत अविनाशी हूं, चित मैंने ज्ञान और दर्शन स्वरूप हूं, और आनंद मैंने सुख स्वरूप हूं। मैं कैसा आत्मा हूं, सच्चिदानंद स्वरूप, इसलिए सुखरूप धर्म है। चेतना प्राण धारण करता है, इसलिए चेतना प्राण धर्म है, चेतना से जीता है, चेतना नहीं हो तो मुर्दा हो जाए, इसलिए आत्मा को जो प्राण है, आत्मा का जो प्राण है वो चैतन्य प्राण है, इसलिए चेतना प्राण को धारण करने वाला को चेतना प्राण धर्म कहने में आया है, प्राण है जीव का वो प्राण। जैसे इस शरीर में श्वासोश्वास और आयु प्राण है, श्वासोश्वास और आयु, ऐसे 10 प्राण है, 5 इंद्रिय, 6 मन, 6 श्वासोश्वास आयु, करता है, इसलिए उसको चैतन्य चेतना प्राण धर्म कहने में
आकार है।
अब कहते हैं परमेश्वर धर्म, सहज रूप परमेश्वर है, ऐसा स्वभाव में परमेश्वर धर्म है, परम ऐश्वर्य जिसमें है। परम मैंने उत्कृष्ट, उत्कृष्ट मैंने अनंत, अनंत सामर्थ्य होने से अपना शक्तियों का सामर्थ्य कितना है, स्वभाव का सामर्थ्य कितना है, अनंत है, इसलिए उसको परम ऐश्वर्य प्राप्त होने से और उस ऐसा परम ऐश्वर्य प्रकट करने का, धारण करने का जो धर्म है उसको कहते हैं परमेश्वर धर्म, परम ऐश्वर्य धर्म। तो आत्मा ही परमेश्वर है, कौन है? आपका आत्मा भी परमेश्वर है और मेरा आत्मा भी कोई छोटा मोटा है ही नहीं, न कोई छोटा है न कोई बड़ा है, सब परमेश्वर ही परमेश्वर है। देखो कैसी सुंदर दृष्टि है, सभी को परमेश्वर जानो, सर्वात्मा सम दृष्टि दियो, सब मैंने परमेश्वर रूप सम दृष्टि दो, आ वचन ने हृदय लखो, छोड़ो मत इस वचन को, लेकिन सब परमेश्वर मूल में है वो ठीक, लेकिन पर्याय में गड़बड़ तो बहुत है, इसका क्या करें, इसको बाउंड करो, इसको जैसे इसको मुख्य करके तुम परमेश्वर पद को गौण करते हो, ये उल्टा कार्य, सरका दो उसको, एक साथ दोनों है, अंदर में परमेश्वर पद विराजमान है पर पर्याय में कुछ गड़बड़ी भी है, विपरीतता भी है, दोष भी है, मलिनता भी है, जानते हैं। अब दोनों उपस्थित है, आपको किसका आदर करना है वो देखो, परमेश्वर का आदर करना है ये मलिनता का आदर करना है, किसका करना है? अगर मलिनता का आदर करोगे आपको मलिनता पैदा हो जाएगी, और परमेश्वर का आदर करोगे आपको परमेश्वर प्रकट हो जाएगा। अपने लाभ नुकसान को देख करके भी बात को सहका दो कम से कम, ऐसा ये परमेश्वर धर्म भी है, यानी परमेश्वर प्रकट पद प्रकट करने का भी ये धर्म है, ऐसा परमेश्वर धर्म है। और भी बहुत से धर्म का यहां वर्णन चला है,